रेहान उठकर कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर वापस आया। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करने लगा। पीछे बैठकर सादिया लेटी हुई थी। वो चुपचाप रेहान को देख रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमे से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? रेहान ने शीशे में उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं। लेकिन सच ये था कि इस वक्त भी उसका मन कहीं और ही था। वो अभी भी नूर के बारे में सोच रहा था। सादिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आपने मुझे जो ड्रेस गिफ्ट की थी मैंने वो नूर को दे दी। आप गलत मत समझिएगा, आपको तो पता है ना नूर कितनी जिद्दी है। उसे वो ड्रेस पसंद आ गई थी और उसे वही चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे दे दी। रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। सादिया ने उसकी आवाज़ में छुपी हुई भावना को नहीं समझा। असल में रेहान नाराज नहीं था बल्कि खुश था, क्योंकि वो ड्रेस नूर की पसंद की थी और अब नूर ने उसे पहन भी लिया था। जब उसने नूर को उस ड्रेस में देखा था तो वो पल उसके दिल में जैसे ठहर सा गया था। नूर उस ड्रेस में उसे और भी खूबसूरत लगी थी और शायद उसी पल से रेहान उसके और करीब खिंचता चला गया था। उधर सादिया, वो धीरे धीरे अपने और रेहान के बीच की दूरी को महसूस करने लगी थी। शायद अनजाने में ही उसने खुद को थोड़ा पीछे खींचना शुरू कर दिया था। कभी कभी रिश्तों में दूरी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे खामोशी से पनपती है, और अब शायद वही दूरी रेहान और सादिया के बीच भी बढ़ने लगी थी। अब आगे किस्मत क्या मोड़ लाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ज़ुबैदा बेगम ने सुबह सुबह फैज़ान को अपने कमरे में बुलाया। फैज़ान कमरे में आया तो ज़ुबैदा बेगम ने कहा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें घूमने जाना है, मसूरी जाना है। फैज़ान ने सिर हिलाकर कहा, जी नूर ने कहा था। ज़ुबैदा बेगम कुछ देर सोचती रहीं फिर बोली, तो ठीक है तुम कल ही चले जाओ। फैज़ान थोड़ा हैरान हुआ, नहीं अभी थोड़े दिनों बाद जाऊँगा। ज़ुबैदा बेगम ने तुरंत कहा, देखो तुम कल ही चले जाओ और साथ में माहिरा को भी ले जाओ। फैज़ान ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं अकेला जाऊंगा, मैं उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगा और वैसे भी वो मेरे साथ जाना पसंद नहीं करती। ज़ुबैदा बेगम ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे, मुझे अरमान का रिश्ता तय करना है। अगर माहिरा तुम्हारे साथ चली जाएगी तो मैं बाद में उसका रिश्ता आराम से तय कर दूंगी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। फिर उन्होंने हल्का सा नाराज़ होकर कहा, माहिरा को तो उसके लिए कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। रेहान से कल बात करूंगी। फैज़ान ने फिर भी शांत स्वर में कहा, मैं उसके बिना ही जाऊंगा। ज़ुबैदा बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, उसके सामने मर्दों की तरह रहा करो, तुम ऐसे डरते हो, तभी तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करती। ये सुनकर फैज़ान कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उधर अरमान सुबह सुबह ही रेहान के घर पहुंच गया था। उस वक्त किचन में सिर्फ नूर थी। वो ओवन में से कपकेक्स निकाल रही थी। जैसे ही उसने ओवन खोलना चाहा, पीछे से अरमान की आवाज़ आई, रुको रुको हाथ जल जाएगा। नूर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पता है मुझे, और उसने आराम से कपकेक्स बाहर निकाल लिए। अरमान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, ये कपकेक्स तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। फिर उसने पूछा, ताई अम्मी अंदर हैं? नूर चाहती थी कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाए। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ अंदर हैं। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, उनसे मैं बाद में मिल लूँगा, रेहान भाई से तो हॉल में मिल चुका हूँ। फिर उसने प्लेट उठाते हुए कहा, इस वक्त तो मैं केक खाने वाला हूँ, और वो प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। नूर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अभी भी कल वाली नाराज़गी बाकी थी। नूर किचन में खड़ी थी और अरमान अभी भी वहीं था। नूर ने झुंझला कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से वरना मैं ताई अम्मी से शिकायत कर दूंगी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो बस एक कपकेक खाना चाहता हूँ। फिर वो हल्के मजाक में बोला, यार तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो। नूर तुरंत पलट कर बोली, मुझे यार मत कहो समझे, और मुझे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर नूर कपकेक्स की ट्रे उठाकर बाहर जाने लगी। पीछे से अरमान बोला, मेरी बात तो सुनो। तभी सामने से रेहान हॉल की तरफ से आता हुआ दिखा। उसने दोनों को साथ देखा तो पूछा, क्या हुआ। अरमान तुरंत सफाई देने लगा, कुछ नहीं मैं तो बस, नूर ने बात काटते हुए कहा, देखिए मैंने कपकेक्स बनाए हैं, आप ट्राई करेंगे। रेहान ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं मुझे नहीं खाने। नूर ने फिर कहा, एक बार खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी बने हैं। लेकिन रेहान पहले से ही गुस्से में था। वो सख्त आवाज़ में बोला, तुम यहाँ पढ़ने आई हो या केक्स बनाने। तभी सादिया भी वहाँ आ गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ रेहान, आप क्या कह रहे हैं। रेहान ने गुस्से में कहा, 3 दिन हो गए नूर यूनिवर्सिटी नहीं गई, किसी ने इसे कहा भी नहीं कि पढ़ाई करनी चाहिए। फिर उसने अरमान की तरफ देखा, और तुम अरमान, मुझे लगता है तुम बस नूर के पीछे ही घूमते रहते हो। तुमने अलग बिजनेस शुरू किया है, उस पर ध्यान दो, मेरे साथ भी तुम्हारा काम है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो। अरमान चुप खड़ा रहा। रेहान ने फिर नूर से कहा, तुम ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इकबाल चाचा को मैं क्या जवाब दूंगा। इतना कहकर वो जाने लगा। नूर की आंखों में आंसू आ गए थे। अरमान ने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। नूर ने तुरंत मना कर दिया, ज़रूरत नहीं है मैं खुद चली जाऊँगी। असल में नूर अरमान के साथ जाना ही नहीं चाहती थी। तभी रेहान ने मुड़कर पूछा, तुम अरमान के साथ क्यों नहीं जाना चाहती। अरमान जल्दी से बोला, नहीं इसका वो मतलब नहीं था। लेकिन नूर गुस्से में बोली,
आपको क्या पता मेरा क्या मतलब था? अरमान चुप होकर उसे देखने लगा, फिर बोला, भाई इस वक्त गुस्से में है। नूर ने तुरंत जवाब दिया, अगर वो मुझसे गुस्सा है तो आपको मेरा वकील बनने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह में जुबान है, मैं खुद बात कर सकती हूँ। सादिया घबरा कर बोली, नूर बस करो, क्योंकि रेहान के सामने कोई इस तरह बात नहीं करता था। लेकिन नूर सीधे रेहान की आंखों में देखकर बोली, अच्छा तो आपको क्या कहना है? घर में पहली बार कोई लड़की इस तरह रेहान की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। नूर की भूरी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। रेहान कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया, उसके दिल में अजीब सा असर हो रहा था। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, सादिया फैजान को बुलाकर नूर को यूनिवर्सिटी भेज दो, और अरमान तुम साइट पर जाओ जहाँ काम चल रहा है। इतना कहकर वो चला गया। नूर गुस्से में खड़ी थी, क्योंकि किसी ने उसके बनाए कपकेक्स चखे तक नहीं थे। तभी घर की एक मेड घबराकर भागती हुई आई। वो बोली, बेगम साहिबा, अच्छा हुआ किसी ने ये कपकेक्स नहीं खाए। सब हैरान हो गए। उसने बताया कि कपकेक्स के पास बोरिक एसिड की बोतल पड़ी थी। नूर ने शायद उसे बेकिंग सोडा समझकर बैटर में डाल दिया था। ये सुनकर नूर का चेहरा उड़ गया। सादिया मेड पर गुस्सा हो गई, तुमने ये बोतल खाने पीने के सामान के पास क्यों रखी थी? मेड घबराकर वहां से चली गई। अब नूर वहीं खड़ी सोच रही थी, अगर किसी ने कपकेक्स खा लिए होते तो क्या हो जाता? उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि आज उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। फैजान हॉल से बाहर जाने ही वाला था कि तभी माहिरा अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। उसने आवाज दी, मेरी बात सुनो। फैजान रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। माहिरा ने सीधे कहा, मैंने सुना है कि तुम मुझे मसूरी लेकर जा रहे हो। फैजान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं आपने गलत सुना है। माहिरा ने भौहें से कोरते हुए कहा, तो फिर ये बात कहाँ से आई? फैजान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरी बात सुनोगी? माहिरा ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे साथ बैठने से अच्छा है कि यहीं खड़े खड़े दो मिनट बात कर लो। फैजान ने धीरे से कहा, प्लीज बैठ जाओ। कुछ पल बाद माहिरा सोफे पर बैठ गई, फैजान भी सामने खड़ा रहा।
वो इधर उधर देखने आया।